अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्न उपनिषद का विचार प्रवचन सत्र में हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के द्वितीय प्रश्नात्मक प्रकरण के 11वें मंत्र का विचार हम लोग कल कर रहे थे, शुरू हुआ था। द्वितीय प्रश्न तथा तृतीय प्रश्न के माध्यम से अपर ब्रह्म विद्या के उपासनात्मक अंश को स्पष्ट किया जा रहा है। अपरा विद्या, कर्म तथा उपासना इन दो विभागों में विभक्त है। कर्म का विस्तार से प्रतिपादन कर्मकांड में हो गया, वह माना जाएगा अपरा विद्या के कर्मात्मक अंश का स्पष्टीकरण। उपासनात्मक जो अंश है अपरा ब्रह्म विद्या का, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्नोपनिषद में दो प्रकरण है, द्वितीय प्रश्न तथा तृतीय प्रश्न और उनके उत्तर रूप। और प्रथम प्रश्न के द्वारा उभय प्रकार की अपरा विद्या के फल का वर्णन हुआ है। प्रथम प्रश्न से द्वितीय प्रश्न में उपासनात्मक अपरा विद्या में अपेक्षित उपास्य प्राण के गुणों का वर्णन हो रहा है। प्राण में गुण बताए जा रहे हैं, सर्वात्मत्व, सर्वाश्रयत्व, प्रजापतित्व आदि अनेक गुण प्राण के यहां पर बताए जा रहे हैं। तो उनमें ये बताया गया कि प्राण ही इंद्र है, कर्थ परमेश्वर है, नौ मंत्र में बताया गया। और प्राण ही संहार काल में रुद्र रूप धारण करके जगत का संहार करता है, और स्थिति काल में विष्णुआदि रूप धारण करके जगत की स्थिति का हेतु बन जाता है यह प्राण ही। और प्राण सूर्य रूप से निरंतर गतिमान हो रहा है अंतरिक्ष में। और किस लिए गति है सूर्य की? तो दिन और रात्रि में संपन्न होने वाले व्यवहारों को संपन्न करने के लिए। यदि दिन रात नहीं होंगे तो दिन में होने वाले व्यवहार, रात्रि में होने वाले व्यवहार ये अलग अलग संपन्न नहीं हो पाएंगे। और दिन रात के लिए जरूरी है सूर्य का उदय और अस्त, और उदित होने के बाद सूर्य अस्त होने के लिए अंतरिक्ष में चलता रहता है पूर्व से पश्चिम के ओर। ये उदय और अस्त के बीच वाला समय माना जाता है दिन। उसमें होने वाले जो व्यवहार वह प्राणी संपन्न कर लेते हैं इस समय उदय और अस्त के बीच में। अस्त होने के बाद भी हम तो विश्राम करते हैं, लेकिन सूर्य विश्राम नहीं करता। फिर हमारे दूसरे दिन के व्यवहारों की उपपत्ति के लिए सूर्य का उदय होना आवश्यक है, इसलिए वह विश्राम किए बिना ही उदय होने के लिए अस्त के बाद चलता रहता है, चलता रहता है। उदय होकर के फिर दूसरे दिन के व्यवहार प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार ये दिन रात सूर्य का गमन चलता रहता है। इसलिए चलता रहता है कि उदय अस्त रूप क्रिया संपन्न करने के लिए। और ये उदय अस्त किस लिए है? सूर्य के दिन रात का विभाग करने के लिए। दिन रात का विभाग एक ही काल का क्यों किया जा रहा है? हमारे अलग अलग व्यवहार की सिद्धि के लिए अलग अलग समय निश्चित किया गया। तो इस प्रकार ये सर्व व्यवहार हेतुत्व सूर्य बनकर के प्राण में एक गुण बताया गया। तो प्राण में ही अन्नदातृत्व गुण भी है, वही पर्जन्य बनकर के बरसता है, तो पर्याप्त अन्न प्रजा के स्थिति का हेतुभूत प्रजा को प्रदान करता है। इस प्रकार ये सुखदातृत्व अन्नदातृत्व यह गुण प्राण में है ये बताया गया। और प्राण का गुण बताया जा रहा है कि वह स्वभावतः शुद्ध है, उसमें अशुद्धि स्वाभाविक है नहीं। संस्कार होता है दो प्रकार का, एक कोई अशुद्धि विद्यमान है किसी वस्तु में तो उसे दूर कर ले, हटा दे, तो माना जाता है दोष अपनयन रूप संस्कार उस वस्तु का संपन्न हुआ, दोषापनयन रूप संस्कार को संपन्न कर लिया, वो संस्कार्य हो गई वस्तु जिसमें से दोष को हटाया, उस वस्तु को कहा जाता है संस्कार्य वस्तु। और किसी में कोई गुण नहीं है उसका आधान उसमें प्रदान करना, तो माना जाता है कि गुणाधान रूप संस्कार उस वस्तु का संपन्न हुआ, तब भी संस्कार्य हुई वस्तु। लेकिन प्राण तो स्वभावत ही इन गुणों से संपन्न है, इसलिए ऊपर से प्राण में गुणों को स्थापित नहीं करना पड़ता। तो गुणाधान रूप संस्कार प्राण का नहीं होगा, और प्राण स्वतः शुद्ध होने से उसमें अशुद्धि का नाम निशान न होने से प्राण का दोषापनयन अशुद्ध्यादि दोषापनयन रूप संस्कार भी नहीं होगा। जिसका संस्कार नहीं होता उसे कहा जाता है व्रात्य। तो 11वें मंत्र में प्राण को बताया गया कि हे प्राण आप व्रात्य हो, का मतलब संस्कार योग्य नहीं हो। संस्कार योग्य क्यों नहीं है? इसलिए कि संस्कार करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? कि स्वभावत ही गुणों से संपन्न हो, इसलिए गुणाधान रूप संस्कार आपका नहीं हो सकता। जिसमें गुण नहीं है उसमें गुण स्थापित किए जा सकते हैं, आप में तो स्वभावत ही है, और दोष है ही नहीं इसलिए दोषापनयन रूप संस्कार भी नहीं हो सकता। इसलिए आप व्रात्य हो यानी स्वभावतः शुद्ध हो। स्वाभाविक शुद्धि नाम का गुण व्रात्य इस पद से प्राण में बताया गया उपासना के लिए कि व्रात्यस्त्वम। इसके बाद ये कहा जा रहा है 11वें मंत्र में ही कि हे प्राण त्वम एकर्षि सन विश्वस्य अत्ता। तो एक ऋषि एक नाम है अथर्व वेदियों के आहनीय अग्नि को एकर्षि कहा जाता है। अथर्व वेद जिनका है और उस अथर्व वेद के द्वारा प्रतिपादित प्रकार से जो प्रतिदिन हवन करते हैं यज्ञादि करते हैं उनके लिए उनके घर में जो आवनीय अग्नि होता है उसका नाम है एकर्षि। एकर्षि नाम वाला अग्नि है, एक ऋषि, ये अग्नि का नाम है। और आवनीय अग्नि क्या करता है कि उसमें प्रदत्त जो हवि है उसे ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए कहा गया कि विश्वस्य अत्ता, हे प्राण, आप ही अथर्ववेदियों के यहां एकर्षि नामा अग्नि बन करके उनके द्वारा दी जाने वाली समस्त हवि के अत्ता हो। अत्ता कहते हैं ग्रहण करता को, स्वीकार करने वाले को, सारी हवि को आप ग्रहण कर लेते हो, लेकिन प्राण रूप से नहीं, एकर्षि नामक अग्नि रूप से। और आप, विश्व शब्द का अर्थ होता है सब, तो विश्वस्य यानी सब के सतपति हो। सतपति में सत शब्द का विद्यमान भी अर्थ होता है, तो जितने भी विद्यमान यानी भावात्मक पदार्थ हैं उनके संरक्षक हो, पति हो, पालक हो, एक अर्थ निकलेगा सतपति शब्द का, तो सभी भावात्मक पदार्थों के संरक्षक, विश्वस्य सतपति। और सत शब्द का अर्थ साधु भी होता है, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। गीता में कहा गया ना कि सत अर्थ में और साधु भाव अर्थ में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सत साधु का अर्थ होता है जो शास्त्रीय गुणों से संपन्न है, आचरणों से संपन्न है, सज्जन है, उसे साधु कहा जाता है, सद्भाव कहा जाता है। तो साधु पति का अर्थ होगा, पति यानी संरक्षक, संरक्षक होते हैं दो प्रकार के, एक संरक्षक होता है जो रक्षक ही भक्षक बन जाता है, वो असाधु संरक्षक माना जाएगा, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन न करने वाला, जिसकी सुरक्षा में लगा है उसकी ठीक से सुरक्षा न करना मनोयोग से, उसे माना जाता है असाधु पति, असत पति कहलाएगा वो, असत संरक्षक। और सत संरक्षक होगा, अच्छा संरक्षक उसे माना जाएगा जो अपने शरीर में प्राण है तब तक अपने संरक्षणीय जो है, जिसकी सुरक्षा में लगा है, उसकी ठीक से सुरक्षा कर लेता है, अपनी बुद्धि मन और सारी शक्ति का उपयोग, जिसकी सुरक्षा में लगा है उसकी सुरक्षा के लिए करता है, उसे माना जाता है सतपथी, कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य का ध्यान रख करके उसे ठीक ठीक करने वाला, उसे कहते हैं सतपति। तो ये विश्वस्य सतपति ही प्राण, विश्व यानी सब का सतपति है, हम यानी किसी की भी सुरक्षा में प्राण कोई भी कमी नहीं बरतता, असावधान नहीं रहता, हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा अलर्ट रहेगा, उसे कोई घटना घटने के बाद में अलर्ट रहने की जरूरत नहीं होती, हमेशा ही अलर्ट रहता है, इसलिए उसकी सुरक्षा में जो है उसे कोई खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। इसे कहा जाता है सतपति। तो प्राण सतपति, इसलिए रात में गहरी नींद में आप हम सो जाते हैं, लेकिन उस समय भी कोई प्राण आपकी सुरक्षा में लगा हुआ रहता है, इसलिए आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्राण संरक्षक है ना, वो जगता रहता है, वो कभी थकता नहीं है। अन्यत्र आता है प्राण के उसमें कि बाकी इंद्रियां तो थक जाती है, वाघ आदि मन भी थक जाता है, थक जाते हैं तो फिर अपना अपना काम करना बंद करते हैं, सो जाते हैं आराम से। और प्राण कभी थकता नहीं है, वह बिना थके निरंतर एक बार ड्यूटी संभाल लेता है। तो इस शरीर से जब निकलना होता है, अंतिम श्वास पूरा हो जाता है इस शरीर का, तभी वो काम करना बंद करता है। फुल टाइम सेवक है, इसलिए कहा कि आप सतपति हो। प्राण हमेशा कार्य करता रहता है, बंद हो जाए, थोड़ा विश्रांति प्राण को देना चाहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाए जीना, आपका व्यवहार करना। तो विश्वस्य सतपति ही। और आगे कहते हैं कि वयम आद्यस्य दातार, आप हमारे अच्छे संरक्षक हो, इसलिए तो हम आपका जो आद्य है, आद्य कहते हैं अदन अर्ह, अदन योग्य पदार्थ को, अदन कहते हैं भक्षण को, अदभक्षणे धातु से आद्य बनता है ना, का अर्थ निकलता है आपका जो भोज्य है, आपका जो भक्षणीय है, उसे हम दातार, आपको प्रदान करने वाले हमेशा बने। रूपादि जो भोग्य पदार्थ हैं, इन पदार्थों का चक्षुरादि इंद्रिया ग्रहण करती है, उन्हें अंदर पहुंचाती है, और उनका उपभोग कौन करता है, तो पहले भी कहा था कि प्राण ही करता है। प्राण के लिए ही चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ये सारी प्रजा भेंट प्रदान करती है रूपादि विषयों की। इसलिए वागादि इंद्रिया जो भी अपना अपना विषय ग्रहण करके अंदर पहुंचाती है, वो किसके लिए पहुंचाती है, प्राण के लिए। तो आद्य शब्द का अर्थ है प्राण का भोग्य। तो प्राण के जो भोग्य पदार्थ हैं उन्हें हम दातार देते रहे आपको।
तो
प्राण ऐसा जड़ नहीं है पत्थर के तरह। हाँ, चेतन की चेतन का प्रतिनिधि है ना, आत्मा का प्रतिनिधि है, इसलिए भूख प्यास किसका धर्म है,
प्राण का,
प्राण का ही है ना, प्राण ही खाता है, प्राण ही पीता है, तो वो भी तो उपभोग है, वो करता है कि नहीं प्राण। और आत्मा तो निर्विकार है, वो भी भोक्ता नहीं बन सकता, भोक्ता बनेगा तो फिर विकारी हो जाएगा, तो कौन भोक्ता है फिर। हाँ, तो प्राण ही भोक्ता है, और प्राण के भोग्य वस्तुओं को, जो जो भी प्राण को अच्छे लगते हैं, वे हमारा अच्छा संरक्षक हैं तो उसे प्रदान करने वाले हम हमेशा बने। ये वागादि इंद्रिया कह रही है कि वयम आद्यस्य दातार। क्यों? तो कहते हैं पुत्र का कर्तव्य होता है पिता को उसकी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। आप हमारे पिता हैं तो पिता त्वम नह, नह का अर्थ है अस्माकम। हे मातरिस्वन, प्राण का संबोधन है कि हे मातरिस्वन आप हमारे, नह का अर्थ होता हमारे पिता हो। जिस कारण से, उस कारण से हमारा कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य निर्वहन करने में हम आपके अनुग्रह से समर्थ बने। आप में तो स्वाभाविक शक्ति है, इसलिए आप हमारे सतपति हो। आपका कर्तव्य तो आप अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हो, हमारी सुरक्षा कर रहे हो, लेकिन हम भी हमारे कर्तव्य का ठीक से निर्वहन कर सके इसकी योग्यता आप अपने अनुग्रह से हमें प्रदान करें। इस दृष्टि से कहा कि आप हमारे पिता हो और हम आपको आपकी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले हमेशा बने। वयम अन्नस्य दाता आद्यस्य दातारः भवेम। तो इस प्रकार यहां पर प्राण का गुण बताया गया। एक तो हवि ग्रहीतृत्व अतृत्व और सबका संरक्षक, सबका पिता, सर्वपितृत्व, एक गुण बताया गया। वागादि जब आपस में विवाद कर रहे थे ना, और अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए अभिमान पूर्वक कह रहे थे कि शरीर रूपी प्रजा का धारण तो हम ही करते हैं, हम ही करते हैं। प्राण ने कहा कि इस प्रकार का अभिमान मत करो, वस्तुतः तो शरीर का धारण करके मैं रखता हूं, मैं सबका आश्रय दाता हूं, तो शरीर को भी मैंने ही आश्रय दे रखा है, मैं ही धारण करता हूं। लेकिन प्राण के इस वाक्य पर विश्वास नहीं हुआ ना वागादि को, पहले आया था। और प्राण ने उनके शारीरिक हाव भाव से समझ लिया कि ये मेरे वाक्य के प्रति अश्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए प्राण ने ये सोचा कि एक बार इनको दिखाई दें कि मैं ही शरीर को धारण करता हूं और तुम लोग तो केवल अभिमान करते हो, इसलिए निकलने की तैयारी करने लगा ना, और शरीर को त्यागता हुआ सा दिखाया, उत्क्रमण करता हुआ सा दिखाया प्राण ने। और जैसे ही प्राण ने इस शरीर से निकलने का नाटक किया तो फिर वागादि का भी अपने अपने गोलकों में रहना असंभव सा हुआ। उनको भी निकलना ही पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको भी कोई खींच रहा है। तो फिर प्राण की स्तुति में लग गए हैं ना। तो इसलिए यहां पर बारहवें मंत्र में बताया जा रहा है कि आप उत्क्रमण मत करो, उत्क्रमण करने से हम लोग अस्थिर हो जा रहे हैं, और आप तो हमारे पिता हो ना। हाँ, आप तो हमारे पिता हो यानी संरक्षक हो। जब तक इस शरीर में रहने का शरीरधारी का प्रारब्ध है तब तक हमारा इस शरीर में रहना आवश्यक है, और आप चले जाओगे तो हम रह नहीं सकते, इसलिए हमें इस शरीर में बसाए रखने के लिए आप इस शरीर से उत्क्रमण मत करो, इस शरीर में बने रहो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं बारहवें मंत्र में कि याते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे याच चक्षुषी याच मनसी संतता शिवां ताम कुरु मोत्क्रमी। तो हे प्राण, इस पद की अनुवृत्ति पूर्व वाक्य से ले आना, पूर्व मंत्र से। तो ये कह रहे हैं कि हे प्राण, ते या तनु वाची प्रतिष्ठिता ताम शिवाम कुरु, ऐसा एक वाक्य बनता है। इसका अर्थ होता है कि आपकी तनु यानी एक स्वरूप, तनु कहते हैं ऐसे शरीर को, शरीर यानी स्वरूप, तो प्राण इस शरीर में पांच विभागों में विभक्त होकर के रहता है ना, तो एक प्राण का अपानात्मक स्वरूप है, एक वृत्ति है अपान वृत्ति, और वो कहां है, वाक में है, वाग इंद्रिय के रूप में अपान वृत्ति अवस्थित है। इसलिए कहा कि ते तनु या वाची प्रतिष्ठिता, यहां वाची शब्द से लेना वाग इंद्रिय का गोलक, तो वाग इंद्रिय के गोलक में वाग रूप से स्थिता जो आपकी तनु है, रूप है एक, वो कौन सा, अपानात्मक रूप, और उस अपान वृत्त्यात्मक रूप को आप शिवाम कुरु, उसे तो आप शिव स्वरूप बनाओ। शिव स्वरूप बनाने का अर्थ देव करना नहीं, कहीं भाषा में मरे हुए को कहा जाता है कि वो देव हो गया, और जो शिव भक्त होंगे उनके लिए कहा जाता है शिव स्वरूप हो गया। तो ऐसे यहां शिवाम गुरु का अर्थ शिव रूपा करो का अर्थ मार डालो ऐसा नहीं, शिव शब्द का अर्थ है यहां पर कार्य योग्य, शिव शब्द का अर्थ एक सुख भी होता है ना, आनंद भी होता है, कल्याण भी होता है, तो कल्याण करने योग्य आपके उस वाक में स्थित रूप को बना लो। कल्याण करने योग्य रूप कब माना जाएगा, कार्य करने योग्य होगा तब। कल्याण है सुरक्षा, इस शरीर में, शरीर का यदि स्थिति काल है, मृत्यु काल नहीं है, तो शरीर में वाग इंद्रिय का बने रहना ये माना जाता है उसका शिव होना, कल्याणकारी होना, उसकी प्रतिष्ठा होना, उसकी सुरक्षा होना। तो जो आपका एक वाक में अपानात्मक रूप है उसे शिव स्वरूप कर दो का अर्थ है कार्य करने में सक्षम बना दो, शिवान गुरु का अर्थ है, उस तनु को आप कार्य में सक्षम बना दो, शिवान गुरु का अर्थ है ताम शिवान गुरु, जो वाणी में आपका स्वरूप है उस स्वरूप को शिव बना दो यानी कार्यक्षम बना दो। और कार्यक्षम कब होगा, जब वो अपने गोलक में रहेगा, कोई भी इंद्रिया जब वो तो तत्व होने के कारण एक बार सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होती है और बाद में महाप्रलय तक इंद्रिया वैसी की वैसी रहती है। स्थूल शरीर तो असंख्य बार बदलते हैं लेकिन इंद्रिया कोई नहीं बदलती, वो वही रहती है। लेकिन एक स्थूल शरीर छोड़ा, दूसरा स्थूल शरीर धारण नहीं किया, इसके बीच में किसी भी इंद्रिय का कोई भी व्यापार नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती, आंख तो रहती है लेकिन देख नहीं पाती, श्रोत्र इंद्रिय होता है सुन नहीं पाता, घ्राण इंद्रिय होती है गंध का ग्रहण नहीं कर पाती, वाग इंद्रिय होती है बोल नहीं पाती। ये जब अपने अपने गोलक में स्थित होगी, गोलक माना जाता है स्थूल शरीर का अलग अलग अंग, वाग आदि इंद्रियों का गोलक है, गोलक है एक प्रकार से कार्यालय ऑफिस हाँ, और वो जो है इंद्रिया अपने अपने गोलक में यानी ऑफिस में स्थित होगी तब तो कार्यकर होगी, कार्य करने में सक्षम होगी, और बाकी वो रहे किंतु गोलक में प्रतिष्ठित न हो तो माना जाता है कि वे कार्य करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। तो आपकी जो वाग इंद्रिय के गोलक में तनु है, एक वाग इंद्रियात्मक रूप है, उसे आप शिव कर लो, का मतलब कार्यक्षम कर लो। वो कार्यक्षम कब होगा? वो तब होगा जब वह अपने गोलक में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित होगा। गोलक में नहीं रहेगा तो कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी गोलक में ठीक से प्रतिष्ठा हो सके ऐसा करो। वो कब होगा? तो प्राण इस शरीर में रहेगा तो इंद्रियां अपने अपने गोलक में रह सकती है, और प्राण ही इस शरीर से निकल जाएगा तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि प्राण यदि निकलेगा तो न चाहते हुए भी इंद्रियों को प्राण के पीछे जाना ही पड़ता है। कैसे जाना पड़ता है? तो यहां पर मधुमक्खी के दृष्टांत से समझाया था कि जैसे मधुमक्खी की एक प्रधान मक्खी होती है रानी, वह यदि छत्ते को छोड़ करके निकलती है तो बाकी को भी न चाहते हुए उस छत्ते को छोड़ करके वो रानी जिधर जा रही है उसके पीछे पीछे जाना ही होता है। कितनी सारी मक्खियां होती है बाकी की, लेकिन एक भी फिर उस छत्ते पे नहीं रहती है, सब उड़ करके पीछे पीछे हो लेती है, और जहां कोई अभी आश्रय है नहीं ऐसी जगह जाकर के वो रानी बैठेगी तो उनको परिश्रम करके नया आश्रय बनाना पड़ता है, लेकिन जाएगी वहीं पर जहां पर वो रानी जाएगी। ऐसे प्राण यदि इस शरीर में रहता है, जब तक रहता है तब तक तो अपने अपने गोलकों में इंद्रियों की ठीक से प्रतिष्ठा मानी जाती है, वे रहती है इंद्रियां, और प्राण निकला तो फिर इंद्रियों को इच्छा हो भी इसी शरीर में अपने अपने गोलकों में रहने की, लेकिन रह नहीं पाती, प्राण के पीछे उनको जाना ही पड़ता है। उस समय माना जाता है प्राण के उत्क्रमण के समय इंद्रियां कार्य करने में अक्षम है, अशिव स्वरूप है, उस समय अशिवा है, और शिवा मानी जाएगी वह गोलक में स्थित होगी तब, और गोलक में स्थित होगी प्राण के शरीर में रहते हुए ही। इसलिए कहा कि प्राण ने पूछा कि वाक में स्थित मेरे आपानात्मक स्वरूप को मैं शिव स्वरूप कैसे बना सकता हूं, तो कहा बस यही करो कि मां उत्क्रमी, आप उत्क्रमण मत करो, तो फिर वाग इंद्रिय अच्छी तरह से अपने गोलक में रह करके भाषण दे सकती है, खूब बोल सकती है, और मृत्यु के समय प्राण निकलेगा और उस समय थोड़ा बोलने के लिए कहो तो
नहीं बोल सकता,
किसी भी प्रकार से नहीं बोल सकता, चाहने पर भी नहीं बोल सकता, उस समय अशिवा माना जाता है प्राण के उत्क्रमण के समय, ये सब इंद्रियां अशिव हो जाती है, कार्य अक्षम हो जाती है। इसलिए कहा कि हे प्राण ते या तनु वाची प्रतिष्ठिता ताम शिवाम कुरु, कि वाग इंद्रिय के गोलक में जो आपका एक रूप अवस्थित है उसे कार्यक्षम बनाओ। और कार्यक्षम वो तब हो सकता है जब आप इस शरीर से उत्क्रमण नहीं करोगे, इसलिए मां उत्क्रमी। ऐसे ही आगे कहा कि श्रोत्रे या ते तनु प्रतिष्ठिता ताम शिवाम कुरु मां उत्क्रमी, ऐसा प्रत्येक के साथ करना। कि श्रोत्र इंद्रिय में मानी जाती है प्राण की तनु व्यानात्मक व्यान रूपा, श्रोत्र इंद्रिय के गोलक में जो व्यान रूपा आपकी तनु है अनेक रूप है उसे आप सक्षम बना लो। वो सक्षम माना जाता है तब शब्द ग्रहण करने योग्य, कब? यदि इस शरीर में प्राण रहेगा तो श्रोत्र इंद्रिय के गोलक में श्रोत्र इंद्रिय अवस्थित रह करके शब्द ग्रहण कर सकता है, ठीक से प्रवचन सुन सकता है। नहीं तो यहीं बैठे बैठे प्राण का उत्क्रमण हो जाए, यदि होने लगे और उस समय प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं ये सुनेगा कि श्रोत्र इंद्रिय प्राण के पीछे लगेगा, प्राण के पीछे ही उसको जाना पड़ेगा। उस समय यदि चाहेंगे कि प्रश्न उपनिषद के द्वितीय प्रश्न के कौन से मंत्र पर क्या बोला जा रहा है उसे सुनो, और किसी किसी का हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता यहीं बैठे बैठे, हाँ होता है सुनते ही सुनते। अध्यात्म प्राण में जो अंदर चल रहा है प्राण उसमें जीवन शक्ति है, उसमें जीवन शक्ति है अध्यात्म प्राण में। हाँ
बाहर का प्राण, ये प्राण
कौन सा बाहर का प्राण?
वायु, वो तो
बाहरी जो वायु चल रहा है, श्वासोश्वास जो चल रहा है वह उस प्राण का व्यापार है, क्रिया है। जैसे बोल रहे हो ये बोलना वाग इंद्रिय नहीं है, बोलने से आप वाग इंद्रिय का अनुमान करते हैं कि आप गूंगे नहीं है, वाग इंद्रिय है। दिखता है तो अनुमान करते हैं कि आंख है, सुनता है सुनते हैं हम तो मानते हैं कि श्रोत्र इंद्रिय है। ऐसे प्राण भी अतीन्द्रिय है, वो दिखता नहीं है तो इंद्रिय से भी ग्रहण नहीं होता। श्वासोश्वास का तो आप नाक के सामने हाथ कर लो तो इंद्रिय में स्पर्श होता है ना, प्रतीति होती है उसकी, वो उसका व्यापार है, क्रिया है, वो प्रत्यक्ष है, वो दिखती है। जैसे बोलना अनुभव करते हैं हम, सुनना अनुभव करते हैं, ऐसे उनका व्यापार का अनुभव करते हैं और फिर अनुमान करते हैं कि ये व्यापार करने वाला प्राण है,
ये जीवन शक्ति।
हाँ वो जीवन शक्ति है, वो अनुमेय है। हाँ हाँ तो ये जो ये कहा जा रहा है कि श्रोत्र में जो श्रोत्र इंद्रिय के गोलक में अवस्थित प्राण का रूप है उसे भी शिव करना है, कार्य सक्षम करना। और वो कार्य सक्षम तब होगा जब प्राण इस शरीर में बना रहेगा, इसलिए कहा कि मां उत्क्रमी। ऐसे चक्षुषी ते तनु प्रतिष्ठिता ताम शिवाम कुरु, ऐसा अनुय करिए कि चक्षु इंद्रिय के गोलक में जो आपका प्राणात्मक रूपांतर है उसे आप कार्यक्षम बनाओ। और ये कार्यक्षम तब बनेगा आप जैसे पहले प्रतिष्ठित थे ऐसे इसमें प्रतिष्ठित रहोगे, उत्क्रमण नहीं करोगे। ऐसे ही मन में एक प्राण का रूप है, उस समानात्मक रूप, उस मन में स्थित समानात्मक रूप को भी आप शिव स्वरूप बना दो, का मतलब कार्य सक्षम कर दो, कार्य करने में समर्थ बना दो। और ये तब है कि आप रहें, आपकी उपस्थिति मात्र से इस शरीर में ये सब कार्यक्षम हो जाते हैं। का अभिप्राय है कि प्राण ने जो उत्क्रमण करने का निश्चय किया ना, ये न केन प्रकारे न प्राण उत्क्रमण न करें, इसी शरीर में बना रहे, ऐसी प्रार्थना वाग आदि कर रहे हैं। तो इस मंत्र के द्वारा ये वागादि स्थिति हेतुत्व ये गुण बताया गया। इस शरीर में प्राण के रहने से ही वागादि रहते हैं, इसलिए वागादि के स्थिति का हेतु कौन है? प्राण। तो वागादि स्थिति हेतुत्व ये गुण प्राण का इस मंत्र में स्पष्ट हुआ। और एक मंत्र है अंतिम मंत्र इस प्रकरण का कि प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञांच विदेहि न इति। तो इदं सर्वं प्राणस्य वशे वर्तते, एक वाक्य है। वागादि कह रहे हैं कि इस लोक के सभी भोग्य पदार्थ और परलोक के सभी भोग्य पदार्थ, इन पर आधिपत्य किसका है? जो भोक्ता होगा उसी के लिए भोग्य होंगे ना। तो इस लोक में भी सारे भोग्य वस्तुओं का भोक्ता प्राण है। अलग अलग शरीरों में वेष्टि प्राण के रूप में अवस्थित होकर के वही समष्टि प्राण भोग भोग रहा है, वही भोक्ता है। तो इस लोक के इदम सर्वम शब्द से लेना इस लोक के सारे भोग्य पदार्थ, वो उस पर किसका अधिकार है? उस पर अधिकार है प्राण का ही। जो भोक्ता होगा उसी का अधिकार भोग्य पदार्थ में होगा। तो इस लोक के जितने भोग्य पदार्थ हैं उन सब भोग्य पदार्थों का जो भोक्ता माना जाएगा उसी के वश में अधीन में माने जाएंगे ये सारे के सारे भोग्य पदार्थ। और इस लोक का भोक्ता अलग और परलोक का भोक्ता अलग, ऐसे भोक्ता अनेक है कि एक है? भोक्ता तो एक है और वो है प्राण। और प्राण कितने हैं? प्राण एक ही है, समष्टि प्राण सूत्रात्मा वो एक है, वही पूरे ब्रह्मांड का अधिपति है। और ये माना जाता है एक जीववाद एक प्रक्रिया आती है वेदांत में, उस एक जीववाद के अनुसार एक ही जीव है और बाकी सब जीवाभास है। तो मुख्य जीव कौन है? तो सूत्रात्मा, ये समझ लो, वही भोक्ता है समष्टि। और हम सब जो दिख रहे हैं ना दिन रात भोग्य पदार्थों को एकत्रित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो सब हम
जीवाभास
है। किस प्रकार के जीवाभास हैं? जैसे हमारा अपना ये जो मानव शरीर है ना, इस मानव शरीर में आपके शरीर में आप अकेले भोक्ता है कि नहीं? अभिमानी, वेष्टि, अभिमानी मान लेते हैं मैं अकेला ही भोक्ता हूं, आंख से भी कुछ देखता हूं तो उसका अनुभव मैं ही करता हूं, कान से सुनता हूं उससे सुख या दुख होता है, मुझे ही होता है, मैं ही भोगता हूं का मतलब है पूरे शरीर में जो भी हो रहा है उसका भोगता हम अपने आप को मान लेते हैं, एक ही जीव मान लेते हैं, इसमें एक ही चेतन है, वो मैं है, वेष्टि जीव। लेकिन इसके अंदर तो वस्तुतः देखा जाए तो कई अरब जीव है, कई अरब जीव है आपके एक शरीर में, एक जीवाणु के ये जो है रक्त का एक बिंदु लेकर के सूक्ष्मदर्शी यंत्र के पास रखा जाए, ब्लड टेस्ट आदि करते हैं तो उसमें लाल पेशी सफेद पेशी ये सब जो आते हैं ना, वो भी जीव है कि नहीं है?
हाँ।
वो भी जीव है। और वो कितने हैं?
मिलियंस।
एक बूंद में ही कितने सारे होते हैं और पूरे खून में कितने होंगे, कितने जीव होंगे, वो असंख्य है, बहुत है। तो एक शरीर के अंदर भी कितने हैं, लेकिन हम अपने अहम के अंदर ही उनको समाये रखते हैं, हम अपने से उनको अलग, हमारा जो अहमास्पद है यह कार्यक्रम संघात सप्त धातु से बना हुआ और उसका एक अंश जो रक्त और उस रक्त के अंदर जो अनेक जीवाणु, वो हमारी अहंता का आस्पद भूत शरीर के अंदर ही होने से हम उनको अलग नहीं समझते, लेकिन उनके भी अपने शरीर हैं और उनको भी सुख दुख होता है, एक दूसरे पर अटैक वो भी करते हैं, करते हैं ना। जो आपके आरोग्य अनुकूल है वो आरोग्य के प्रतिकूल जीवाणु यदि आ जाते हैं तो उनको हटाते हैं, और जो कमजोर पड़ता है वो परास्त होता है, जो बलवान होता है वो विजयी हो जाता है। तो ऐसे उन जीवाणुओं में भी आपस में शरीर आदि है, लेकिन वो हमारे दृष्टि में अलग अतिरिक्त ही नहीं, जैसे ऐसे उन जीवाणुओं के तरह ही आपकी दृष्टि में जब कभी दृष्टि उस पर पहुंचती है तब मान लेते हैं कि इसके अंदर और है। ऐसे ही ये बड़े बड़े हाथी और ये सब जो देखे जा रहे हैं ना, वो समष्टि जो जीव है उसके शरीर के अंदर बहने वाले रक्त के अंदर के उन पेशियों के तरह है, लाल पेशी सफेद पेशी के तरह, जीवाणुओं के तरह है। वो जीवाभास है कौन, हम सब उस जीव के दृष्टि से। इसलिए मुख्य पूरे ब्रह्मांड का भोक्ता एक जीव वो है, वो भोक्ता है, वो इस लोक के भोग्य का भी भोक्ता है तो परलोक के भोग्य का भी भोक्ता है, और भोक्ता का ही भोग्य वस्तुओं पर अधिकार हुआ करता है, ये माना जाता है ना। और भोक्ता एक ही है, अनेक नहीं, अनेक तो जो भोक्ता दिख रहे वो भोक्तृभास है, वो भोक्तृभास कहलाएंगे, और मुख्य भोक्ता प्राण। इसलिए ये कहा गया कि इदम सर्वम शब्द से लेना, इस पृथ्वी लोक में जो कुछ भी भोग्य जात दिख रहा है वह प्राणस्य वशे वर्तते, प्राण के अधीन है, प्राण का उस पर अधिकार है। और त्रिदिवे शब्द का अर्थ है वो स्वर्ग लोक में यानी परलोक में, त्रिदिव शब्द से लेना, जो भी भोग्य पदार्थ हैं देवताओं के भोग्य, वहां भोक्ता कोई इस लोक के भोग्य पदार्थों के भोक्ता से अलग नहीं है, इस लोक का भोक्ता और परलोक का भोक्ता वही है, खाली उपाधियां बदल जाती हैं। प्राण ही मनुष्यादि उपाधियां धारण करके इस लोक के भोग भोक्ता है और इंद्रादि शरीर रूपी उपाधि को लेकर के देवलोक के भोग भोक्ता है, इसलिए भोक्ता तो वही है।
प्राणी बंधन है,
प्राण बंधन है ऐसा नहीं कहा जाता, वो श्रुति वाक्य है छांदोग्य में, प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। ये प्राण बंधन नहीं, प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। तो हे सौम्य यानी प्रिय दर्शन श्वेत केतु, उदालक जी श्वेत केतु को कह रहे हैं कि हे प्रिय दर्शन श्वेत केतु, ये जो मन है ना, मन यानी जीव और प्राण यानी परमात्मा और बंधन का अर्थ है आश्रित, तो ये जीव परमात्मा के ही आश्रित है। सुषुप्ति के समय कहाँ रहता है? कहते हैं जागृत और स्वप्न में विषयों का भोग करते करते जब थक जाता है और अपनी थकान दूर करने के लिए फिर कहीं दूसरे जगह आश्रय न देख करके परमात्मा का आश्रय लेता है, प्राण का आश्रय लेता है और वहां प्राण में जाकर के विश्रांति पाता है। इसके लिए दृष्टांत बताया वहां पर, जैसे कोई एक पंछी है उसके पैर में बांध दिया एक लंबा धागा और दूसरा धागे का छोर बांधा किसी जहाज में पानी की जहाज में, और फिर समुद्र के अंदर कई किलोमीटर दूर तक वो जहाज गया है और पक्षी जहाज से छुटकारा पाने के लिए उड़ता है, तो वहां कोई पेड़ पौधे मिलेंगे उसको?
नहीं।
उड़ते उड़ते थक जाए तो थोड़ा बैठ करके विश्रांति लेने के लिए समुद्र के अंदर न तो कोई पहाड़ है, न तो कोई पेड़ है, न कुछ पौधा है कि जिस पर बैठ करके थोड़ा अपनी थकान दूर कर ले। फिर इधर उधर चारों दिशाओं में उड़ लेता है और अंतिम में थक जाता है तो आकर के कहां बैठता है? उसी जहाज पर बैठ जाता है, क्योंकि दूसरी जगह ही नहीं है उसको आश्रय लेने के लिए। ऐसे जीव भी इस लोक में परलोक में कहीं पर भी भटकता रहे जागृत में, लेकिन थक जाता है तो जब विश्रांति पानी होती है तो सुषुप्ति के समय इसी परमात्मा में आकर के स्थित हो जाता है। सता सोम्य तदा संपन्नो भवती, ये कहा गया। वो है प्राण बंधनम ही सौम्य मना। तो प्राणस्य इदम वशे वर्तते, ये इस लोक का सारा भोग्य, ऐसे परलोक का भी सब कुछ जो भोग्य है, त्रिदिवे यत सर्वम भोग्यम प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम यानी विद्यमानम। तो स्वर्ग में भी जितने भोग हैं देवता शरीर से भोगे जाने वाले, वे सब भी किसके अधीन हैं? देवता शरीर से भी प्राण का उत्क्रमण होने लगे तो उस समय फिर स्वर्ग के कोई भोग भोगे जा सकते हैं क्या? भोगे जा सकते हैं? नहीं भोगे जा सकते हैं। का मतलब वहां भी यही प्राण ही भोगता है, इसी के अधीन सारा संसार है। इसलिए क्या करो? तो वागादि प्राण को प्रार्थना कर रहे हैं कि यथा माता पुत्रान रक्षति, ऐसे लगाना कि माता जैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करती है, रक्षा करती है, ऐसे आप हमारी सुरक्षा करिए। प्राण को वागादि कह रहे हैं, और ये कब होगी सुरक्षा? जब प्राण बना रहेगा तभी सुरक्षा होगी। जैसे गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए माता का जीना आवश्यक है, गर्भ से बाहर आने के बाद, जन्म होने के बाद, तो जन्म होते ही माता चली भी जाए और उसका प्रारब्ध हो तो टिक जाएगा, लेकिन जब तक गर्भ में है तो उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए माता का जीना आवश्यक है ना। माता मर जाए और गर्भस्थ शिशु बना रहे ऐसा तो संभव नहीं है, तो माता का जीना आवश्यक है गर्भस्थ शिशु के जीने के लिए। ऐसे ही इस शरीर में प्राण का रहना आवश्यक है वागादि के स्थिति के लिए। इसलिए वागादि कहते हैं, तो जैसे माता गर्भवती माता जीती है गर्भस्थ शिशु के सुरक्षा के लिए, जी करके सुरक्षा करती है, ऐसे ही आप भी इस शरीर में हमारी सुप्रतिष्ठा के लिए प्रतिष्ठित ही रहिए, उत्क्रमण इस शरीर से मत करिए। इस अभिप्राय से कहा कि मातेव पुत्रान रक्षस्व और श्रीश्च प्रज्ञांच विधेहि न, और आप हमें श्री प्रदान करो। श्री कहते हैं ऐश्वर्य को, और ये ऐश्वर्य दो प्रकार का, ब्राह्मणों का ऐश्वर्य माना जाता है वेद को, इसलिए ऋचः सामानी यजुंसी साही श्री सताम, एक वेद वाक्य आता है, और इसमें बताया गया कि ये ऋगादि मंत्र ब्राह्मणों का ऐश्वर्य है और क्षत्रियों का ऐश्वर्य है ये धनादि, और इन दोनों प्रकार की जो श्री है इसे आप हमें प्रदान करो, विधेयी का अर्थ है प्रदान करो। और प्रज्ञा, तो प्रज्ञा यानी बुद्धि विवेक, ऐसा हम जैसे अभी पूर्व में अभिमान हुआ था, हमें मूढ़ता आ गई थी, अविवेक आया था, और अविवेक वशात ही हमने अभिमान कर लिया कि हम ही इस शरीर के विधारण करता है, और उसी के कारण ये संकट आया कि आप हमारे उस अभिमान को दूर करने के लिए शरीर को छोड़ करके जा रहे हैं और हम ही असुरक्षित हो गए। इसलिए इस प्रकार का अविवेक फिर हमारे में प्रवेश न कर सके, ऐसी प्रज्ञा आप हमें प्रदान करें, विवेक दें कि हम विवेकी बने रहें और ऐश्वर्य से संपन्न हो। इस प्रकार की प्रार्थना प्राण से एक ही है, ये स्तोत्र है। इति शब्द का अन्वय है चौथे मंत्र में अंतिम में आया न कि इति स्तुवंती, एक चौथा मंत्र गया पहले, ये तो तेरहवा है। ये कहा था कि प्राण के महात्म्य को जान करके वागादि प्राण की स्तुति करते हैं, तो प्राण की स्तुति वागादि ने की, ये पांचवें मंत्र से लेकर के तेरहवें मंत्र तक नौ मंत्रों से, तो इति का अन्वय है इति स्तुवंती उसके साथ, तो इस प्रकार प्राण की स्तुति वागादि करते हैं, की उन्होंने ये स्तुति। फिर प्राण भी उनको तो खाली अभिमान से रहित मात्र करना चाहता था, संरक्षक है ना, और वो सतपति है, वो भी जानता है कि असमय में इनको नष्ट करना तो अपने सतपतित्व को भंग करना है, इसलिए वो भी उत्क्रमण नहीं करेगा, खाली उत्क्रमण का नाटक कर रहा था अभिमान से रहित करने के लिए। और इससे कई एक गुण निश्चित हुए प्राण में उपासना के लिए। इस प्रकार ये द्वितीय मंत्र प्रकरण का विचार यथामति संपन्न हो जाता है। कल से तृतीय प्रश्न का विचार प्रारंभ होगा। ओम हरिओम।